Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Om Vishnupad Paramahansa Parivraj Kacharya Shrotsarshat Shishya Madhubhai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Shila Prabhupada Ki ISKCON DVT Founder Acharya Srila Prabhupada ki Upasthit Bhakta Vrind ki jai, Upasthit Bhakta Vrind ki jai, Upasthit Bhakta Vrind ki jai, Shri Shri Guru Gauranga ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devim Sarasvatim Vyasam Tato jayamudiraye Nashta prayeshva bhadreshu Nityam bhagavat sevaya Bhagavat yuttama shloke Bhaktir bhavati nashtiki भागवत सार के श्रृंखला में दसवें स्कंद के 84वें अध्याय पर चर्चा है तो इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे कृपया श्लोक दोहराइए श्री शुक उवाच श्रुत्वा प्रथा सुबल पुत्र यज्ञ सेनी माधव्य धक्षिति पत्न्य उत स्वगोप्यः कृष्णे खिलात्मनि हरौ प्रणयानुबन्धम् सर्वाम्बिति स्मुरक अलं मिश्रुकला कुलाक्षः श्रीशुक उवाच श्रुत्वा पृथा सुबलपुत्र्यथ याज्ञसेनी माधव्यथ क्षितिपपत्न्य उत स्वगोप्याः कृष्णे खिलात्मनि हरौ प्रणयानुबन्धम् सर्वाविति स्म्युरुरं शुकलाकुलाक्षः श्रीशुक उवाच श्रुत्वा प्रथा सुबलपुत्र्यथ याज्ञसेनी माधव्यथ क्षितिपपत्न्य उत स्वगोप्याः कृष्णेऽखिलात्मनिहरौ प्रणयानुबन्धम् सर्वाविशिष्मुरलं शुकलाकुलाक्षः श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्रुत्वा सुनकर प्रथा कुंती सुबल पुत्री सुबल की पुत्री गांधारी अथ तथा याज्ञसेनी द्रौपदी माधवी सुभद्रा अथ तथा क्षितिप राजाओं की पत्न्यः पत्नियां उत भी स्व भगवान कृष्ण की निजी गोप्यः गोपियां कृष्णे कृष्ण को अखिल सबों के आत्मनि आत्मा हरौ भगवान हरि को प्रणय प्रेममय अनुबंधम आसक्ति सर्वाः सभी विस्मितु विस्मित हुई अलम अत्याधिक अश्रुकल आंसुओं से आकुल पूर्ण अक्षह नेत्रों वाली। इसका अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार से है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्रथा गांधारी द्रौपदी सुभद्रा अन्य राजाओं की पत्नियां तथा भगवान की ग्वालिन सखियां सभी जीवों के आत्मा तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी रानियों के अगाध प्रेम को सुनकर चकित थी और उनके नेत्रों में आंसू आए थे। तात्पर्य भद्र महिलाओं की इस गोष्ठी की प्रमुख श्रोता द्रौपदी हैं, क्योंकि श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार द्रौपदी ने ही प्रश्न किया था जिसका उत्तर कृष्ण की रानियों ने अपनी अपनी कथा सुना कर दिया। क्योंकि पिछले अध्याय में उपस्थित जनों में गांधारी तथा अन्य स्त्रियों का जिनका नाम यहाँ बताया गया है उल्लेख नहीं हुआ है, अतएव आचार्य श्रीधर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उन्होंने रानियों की कथाओं को दूसरे के मुखों से सुना होगा। निसंदेह द्रौपदी अपने से वयोवृद्ध प्रथा तथा गांधारी की उपस्थिति में इतनी स्वतंत्रता से कभी नहीं बोली होंगी, ना ही उन गोपियों के समक्ष जिनकी मनोवृत्ति द्वारका की रानियों के प्रति संवेदात्मक नहीं थी। यद्यपि गोपियों के भी आंसू आ गए, किंतु ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो आया था, न कि उन रानियों के प्रति उनको कोई प्रेम सामीप्य था। वस्तुतः हमें स्मरण रखना होगा कि आध्यात्मिक स्तर पर सदैव पूर्ण सामंजस्य रहता है। शुद्ध भक्तों में जो विरोध झलकता है वह सांसारिक ईर्ष्या तथा लड़ाई झगड़े जैसा नहीं होता। गोपियों की ईर्ष्या वास्तविकता न होकर मात्र आभास थी, जो कृष्ण के प्रति छल के स्नेह का आनंदमय प्रतीक थी। श्री श्रीधर स्वामी पाद स्वगोप्य की व्याख्या यह करके कहते हैं कि गोपियां रानियों की स्वस्वरूप थी। ओम ज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पादा सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाद्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचो चतः कर हानं च कदाचिन् माम् प्रेम्णा हृत्कण्ठयो सुर। हरे कृष्णा। तो 84वां अध्याय है अब 10वें स्कंद का, और इसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र में साधुओं के द्वारा शिक्षा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे पिछले अध्याय में रानियों ने अपनी अपनी कथा कही और सबने सुना, और जैसे इस श्लोक में पढ़ा गांधारी, कुंती, सुभद्रा इत्यादि, इनको भी बड़ा आनंद आया, गोपियां आंखों में आंसू आ गए कृष्ण की लीला सुनकर। तो जब ऐसे सब बातें कर रही थी तो अचानक सबने देखा कि बहुत से साधु आए, महान ऋषि सब एक साथ आए हैं। तो ये महान ऋषि क्यों आए थे? जैसे ही जहां भी थे, जिस स्थिति में थे, जिस स्थान में थे, उनको जैसे ही पता चला कि कृष्ण कुरुक्षेत्र में आ गए हैं तो सब उनके दर्शन के लिए आ गए कि वहां क्या हो रहा है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, चलो देख कर आते हैं। तो कौन कौन आए? सारे महान ऋषि आए, व्यासदेव आए, नारद मुनि आए, असित आए, देवल आए, गौतम ऋषि आए, शतानंद आए, विश्वामित्र आए, परशुराम जी आए, अत्रि मुनि आए, ऐसे सारे ऋषि आए हैं केवल कृष्ण के दर्शन के लिए। तो ये सब ऋषि जब आए, जैसे ही आए तो ये लोग सब बैठे थे, बातचीत चल रही थी, अचानक सब उठकर खड़े हो गए। जैसे ऋषियों को देखा, जितने वहां राजा उपस्थित थे, वृष्णि वंशी थे, कृष्ण बलराम, सब उठकर खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत प्रणाम किया साधुओं को। तो भगवान को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे साधुओं का स्वागत किया जाना चाहिए। तो जब वो आए, उन्होंने सबने प्रणाम किया, उनके चरणों को धोया, उनकी पूजा की, आरती की, फिर उनको बिठाया अच्छी तरह से, हर एक साधु को, हर एक ऋषि को। और फिर जब सबको ऐसे बिठा दिया, सबका स्वागत हो गया, तब श्री कृष्ण बोलने लगे। तो एक बहुत सुंदर प्रथा है हमारे वैदिक सभ्यता की कि जब कोई साधु घर में आए या कहीं पर भी आए, जब हम उनको देखें तो कैसे प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए दंडवत कहा जाता है। दंडवत का अर्थ होता है डंडे के समान गिर जाना। अगर डंडे को ऐसे पकड़कर छोड़ दिया जाए तो वो कैसे गिरता है, उसको दंडवत कहते हैं। ऐसे हमें प्रणाम करना होता है, जैसे ही कोई हमें साधु दिखते हैं तो दंडवत प्रणाम होता है, डंडे की तरह गिर जाना, उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। आजकल तो हम लोग फोन पर ही कर देते हैं दंडवत, तो समय बदल गया है, लेकिन दंडवत का अर्थ ऐसे होता है, और उसी को कहते हैं निपात। निपात मतलब गिरना, नम्र होना, या प्रणिपात, प्रकृष्ट रूपेण निपात। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने यह आदर्श प्रस्तुत किया, क्यों साधुओं का स्वागत किया जाता है, ऐसा कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ये लोग राजा हैं, ये अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो ब्राह्मण हैं, साधु हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिससे साधुओं का गुणगान हो या इतनी उनकी सेवा। ऐसा वर्णन नहीं है कि जब कोई राजा आते थे तो उनके चरण धोए जाते थे या उनको इतना मान सम्मान दिया जाता था। ठीक है, राजा की तरह उनको सम्मान मिलता था, उनका भी स्वागत होता था राजा की तरह, लेकिन ये साधुओं में ऐसा कौन सा लक्षण है? तो वैरागी हैं, कुछ ऐश्वर्य नहीं है, कोई राज्य नहीं है इनका भ्रमण करने वाले, कहीं एक कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इनके हृदय में कृष्ण है। एक ही चीज साधुओं को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है और वो है कृष्ण की उपस्थिति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के लिए समर्पित जीवन। तो क्योंकि वो कृष्ण से जुड़े हैं और क्योंकि वे हमें कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। उनका मान सम्मान किया जाता, उनकी कोई भौतिक स्थिति नहीं देखी जाती, अरे ये तो बड़े गरीब व्यक्ति है, अरे ये तो इनके पास कुछ है भी नहीं। देखो सेजेस, कोई कह सकता है साधु सब देर से आए, क्यों, हो सकता है साधन नहीं होगा, रथ वगैरह पे लोग आ गए थे, नहीं साधुओं को कोई आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे श्री कृष्ण ने जब उनको मान सम्मान कर लिया, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका जो हमें आज ये दर्शन प्राप्त हुआ, आपसे अब सुनने को प्राप्त होगा, तो ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य आज हमें प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण कह रहे हैं जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो गया, किस लिए, बस आपके दर्शन हो गए। और क्यों ऐसा है, तो बहुत नम्रता से श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो केवल भगवान को विग्रह में देखता है, वो व्यक्ति अर्थात ये कनिष्ठ भक्त का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा तपस्वी नहीं है, केवल विग्रह में भगवान को देखता है, अर्थात भक्तों में या आप में भगवान को नहीं देखता, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी ये ऐसा कैसे होता है कि आपके दर्शन उसको मिलते हैं, आपको वो स्पर्श कर पाते हैं, आपके चरणों की सेवा कर पाते हैं, आपसे सुन पाते हैं। तो यहां दो तरीके से इसको श्री कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अपनी स्थिति बता रहे हैं कि हम लोग तो ऐसे कनिष्ठ लोग हैं, हम तो आप में भगवान को देख भी नहीं पाते हैं, हम तो केवल मूर्ति में बस भगवान को देखते हैं, कोई तपस्या नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों पर आप कैसे, ऐसे हो सकता है कि आपका हमें दर्शन मिल रहा है। दूसरी ओर भगवान ये समझा रहे हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके ऊपर, जिनको केवल जो विग्रह में भगवान को देखते हैं, भक्तों का सम्मान नहीं करते, या साधुओं में भक्तों में भगवान को नहीं देखते, ऐसे लोग और जो तपस्वी नहीं हैं, स्वयं जीवन में कोई तपस्या नहीं करते, ऐसे लोगों पर भी साधुओं की कृपा हो जाती है, क्योंकि साधु कृपालु है, उनका कोई योग्यता नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है, ये गुण साधुओं का है कि उनके अंदर कृपा भरी हुई है। तो इसको भगवान प्रकट कर रहे हैं कि दरअसल ये आपकी कृपा है कि ऐसे दर्शन उनको हो जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि ऐसे लोग जो केवल जल या नदी को ही पवित्र स्थान मानते हैं, या फिर पत्थर या अन्य चीजों से बने हुए विग्रह को ही बस महत्व देते हैं, तो ऐसे लोग भी आपके दर्शन से शुद्ध हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भगवान ये सूर्य, ये चंद्र, ये जो पृथ्वी, वायु, आकाश इत्यादि है, इसके जो नियंता हैं, ये पापों को दूर नहीं कर सकते। देखिए भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया, ये पापों को दूर नहीं कर सकते, तो फिर पाप कैसे दूर होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जब साधुओं के चरणों की सेवा की जाए, भक्तों की सेवा की जाए, तो पाप दूर होते हैं। ये सारे जो देवी देवता, नियंत्रक देवता हैं, इनसे कुछ नहीं होता। देवताओं में श्रेणियां होती हैं, कुछ देवता होते हैं जिन्हें नियंत्रक देवता कहा जाता है। नियंत्रक मतलब जो नियंत्रण करते हैं कुछ चीजों का, हर देवता नियंत्रण नहीं करता, ये जान लीजिए। कुछ नियंत्रक होते हैं, सूर्य, चंद्र इत्यादि, ये सब नियंत्रक देवता हैं। और फिर कुछ देवता होते हैं जो कर्मजा कहलाते हैं, अर्थात जिन्होंने अच्छा कर्म किया है और थोड़े समय के लिए स्वर्ग में गए हैं, जैसे ही उनका कर्म समाप्त होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो ये एक प्रकार के देवता हैं। जो नियंत्रक देवता होते हैं उनका समय स्वर्ग में बहुत लंबा होता है, जैसे इंद्र इत्यादि, तो ये तो बहुत लंबे समय तक, प्रायः मनु के एक समय तक रहते हैं। लेकिन जो कर्मजा देवता हैं वो केवल कर्म से जाते हैं, थोड़ा बहुत भोग करते हैं और फिर कर्म समाप्त होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं मर्त्य लोक में। तो जो नियंत्रक देवता हैं उनके अंदर शक्ति है कुछ प्रदान करने की, लेकिन भगवान कहते पापों को, फलों को वो भी दूर नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट वो कर सकते हैं, लेकिन पापों को पूर्ण रूप से दूर नहीं कर पाते। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो भक्तों के चरणों की सेवा से होता है। तो फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर को स्व मानता है, अपने शरीर को ही अपनी पहचान मानता है, पत्नी बच्चों इत्यादि को अपना मानता है, मेरे हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, भूमि को बहुत पूजनीय मानता है और केवल तीर्थ स्थान में जाकर अगर किसी नदी में जल में स्नान कर ले बस उसी को तीर्थ मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी सही ज्ञान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो कभी भी साधुओं के साथ अपनी पहचान नहीं बना पाता, वो अपनी पहचान केवल शरीर से बनाता है। वो कभी भी साधुओं से संबंध नहीं बना पाता क्योंकि वो अपना संबंधी केवल पत्नी और बच्चों को मानता है। और इसी तरह जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। और इसी तरह वो केवल भूमि को पूजनीय मानता है, साधुओं को पूजनीय नहीं मान पाता, इसीलिए उसके ऊपर कोई कृपा नहीं होती। भगवान कहते हैं वो गोखरा है। गोखरा मतलब गाय और गधे की तरह है, मतलब पशु है, उसकी बुद्धि पशु के समान है। तो इसको समझाते हुए आचार्यों ने बताया है कि कौन गोखरा होता है या कौन व्यक्ति के लिए कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर से भी पहचान बनाता है और साधुओं से भी पहचान बनाता है वो गोखरा नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो केवल साधुओं से पहचान बनाता है वो सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पत्थर या मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को ही भगवान मानता है, उसमें ही भगवान को देखता है, वो गोखरा है। लेकिन जो व्यक्ति मिट्टी और पत्थर से बनी हुई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को या विग्रह को भगवान मानता है वो गोखरा नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बताया गया है। तो ऐसे श्री भगवान ने साधुओं का गुणगान किया। तो जब साधुओं ने सुना तो वो कुछ समय के लिए भ्रमित हो गए और चुपचाप खड़े रहे, देख रहे हैं कृष्ण की विस्मयकारी शक्ति कि ये क्या कर रहे हैं। भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और ये हमारा गुणगान कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा वे चुप हो गए और फिर वे मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, साधुओं से वो बोलने लगे कि ये जो साधु उनसे बोलने लगे कि ये जो आपकी मोह में डालने वाली शक्ति है इसको देखकर हम बड़े विस्मित हैं, इसने हमें भ्रमित कर दिया है। आप यहाँ मनुष्य के समान लीला कर रहे हैं, साधारण मनुष्य के रूप में आप प्रकट हुए हैं, तो इसको देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप ही तो रचना करते हैं, आप ही इस जगत का पालन करते हैं और आप ही संहार करते हैं। तो इसको वो कहते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप अलग अलग रूप लेते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों को दंड देने के लिए। तो भगवान के अलग अलग रूपों का कारण वो बताते हैं, चार कारण देते हैं। पहला कि आप आते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए, दूसरा असुरों को मारने के लिए, तीसरा वेदों के अस्तित्व को, वेदों की सत्ता को बनाए रखने के लिए, और चौथा लीलाओं का आनंद लेने के लिए आप आते हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने जब वेदों का वर्णन किया तो कहते हैं कि वेद आपका हृदय है। और व्यक्ति कैसे वेदों को समझ सकता है? तो वेदों को समझने के तीन लक्षण या तीन योग्यताएं वो देते हैं कि कौन व्यक्ति वेदों को समझ सकता है। कहते हैं वेदों को वो समझ सकता है जो तपस्वी है, जो जीवन में तपस्या करता है। वेदों को वो समझ सकता है जो अच्छी तरह उनका अध्ययन करता है, और वेदों को वो समझ सकता है जो आत्मसंयमी है। तो ऐसे वेदों को समझा जाता है। तो व्यक्ति को आत्मसंयमी होना चाहिए, व्यक्ति को तपस्वी होना चाहिए, तपस्या जीवन में करनी चाहिए और बड़े ध्यान से सही मार्ग निर्देशन में अध्ययन करना चाहिए, तब वो वेदों को समझ सकता है। वेदों को ही नहीं, वो कहते हैं वो इस सृष्टि को समझ सकता है, या आपके परम धाम को भी समझ सकता है, आपको समझ सकता है जो इस व्यक्त और अव्यक्त के परे हैं। तो इसीलिए, और आप ब्राह्मणों को, श्री कृष्ण को ब्राह्मणों, ब्राह्मण बहुत प्रिय है, तो आप ब्राह्मणों को आदर इसीलिए देते हैं क्योंकि ब्राह्मण सही दृष्टि से वेदों को प्रस्तुत कर पाते हैं। देखिए, कई स्थानों पर वर्णन आता है कि भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, तो कभी कभी लोग इसको गलत प्रस्तुत करते हैं, जातिवाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि ये क्या है, भगवान बाकियों को क्यों नहीं प्रेम करते हैं। भगवान को ब्राह्मण इसलिए पसंद नहीं है कि उन्होंने किसी कुल में जन्म लिया, भगवान को ब्राह्मण इसलिए पसंद है क्योंकि वो वेदों को जैसे हैं वैसे प्रस्तुत करते हैं, या दूसरे शब्दों में हर वो व्यक्ति जो वेदों के ज्ञान को जैसा है वैसा प्रस्तुत करता है कृष्ण को प्रिय है, फिर उसका कोई भी कुल क्यों ना हो। तो ऐसे उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि आज हमारा जीवन, हमारी शिक्षण, हमारी तपस्या, सब कुछ आज पूर्ण हो गई, हमें आपके दर्शन हुए। वैसे तो आप अपने आप को छुपा कर रखते हैं माया के पर्दे से, और इसीलिए सारे राजा और ये वृष्णिवंशी भी, ये भी आपकी माया से ढके हुए हैं, इसीलिए आपको समझ नहीं पाते हैं कि आप कौन हैं। आप इस जगत की आत्मा हैं, आप जो काल है उसका प्रभाव है आप, और आप परम नियंता हैं। तो कहते हैं कि ये समझ नहीं पाते हैं, ना ये वृष्णिवंशी समझ पाए हैं, ना ये जो राजा सब खड़े। तो वृष्णिवंशी भी कैसे माया में आ सकते हैं, तो आचार्यगण समझाते हैं कि अन्य राजाओं पर भगवान की माया का प्रभाव है और वृष्णिवंशियों पर योग माया का प्रभाव, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे स्वप्न में व्यक्ति अपनी पहचान भूल जाता है, स्वप्न में वो कुछ देखता है, मैं राजा बन गया हूं, मैं कुछ और बन गया हूं, उसकी पहचान कुछ और है, वो भूल जाता है, कुछ और पहचान करता है। इसी तरह आपकी माया से भ्रमित होकर लोग आपको भगवान के रूप में पहचान नहीं पाते। तो ऐसे वो कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि आज हमारा बड़ा भाग्य है, हमने आपके दर्शन किए, जिनके चरणों से गंगा निकलती है, गंगा जिनके चरणों से बहती है, तो आज हमारा बड़ा भाग्य है कि आपके हमें दर्शन हुए। और फिर उन सब ने प्रणाम किया और भगवान को, और बड़े प्रसन्न हुए और अब जाने के लिए तैयार हो गए कि अब जाना है। तो जैसे ही वसुदेव जी ने देखा कि अरे जा रहे हैं सब, वो भाग कर आए, उन्होंने चरण पकड़े उनके और उनसे एक प्रश्न किया, से कहा आप आए हैं तो कृपया ये बताइए कि व्यक्ति के कर्म फल दूसरे किसी कर्म से कैसे नाश हो सकते हैं, ऐसे कौन से कर्म है जिनसे व्यक्ति के कर्म फल नाश हो सकते हैं, ये प्रश्न उन्होंने किया। तो जैसे ही उन्होंने प्रश्न किया, नारद मुनि वहां उपस्थित थे, तो नारद मुनि सारे साधुओं को कहते हैं कि वसुदेव जी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आवश्यकता है, जिनके पुत्र कृष्ण हैं और ये सारे प्रश्न वो बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं, वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों, क्योंकि वसुदेव जी कृष्ण को एक छोटा बालक मानते हैं, तो मेरा बच्चा है, इसको क्या पता क्या होगा, तो इसलिए हमसे पूछ रहे हैं, नारद मुनि कहते हैं। और वो कहते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी अति निकटता अपराध को जन्म देती है, फेमिलियरिटी ब्रीच कंटेम्प्ट, तो जब बहुत निकटता हो जाती है तो अपराध हो जाता है, नारद मुनि कहते हैं। जैसे वो कहते हैं कि कई लोग जो गंगा के तट पर या गंगा के निकट रहते हैं, वो कहीं दूसरे स्थान में जाते हैं पवित्र होने के लिए, यात्रा करने के लिए, इसीलिए वो कहते हैं कि ये वसुदेव जी कृष्ण के निकट रह रहे हैं, इनको हमसे क्या जरूरत है प्रश्न पूछने की, लेकिन फिर भी ये पूछ रहे हैं क्योंकि उनको बच्चा मानते हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा, तो साधुओं ने बड़े प्रसन्न हुए, वसुदेव जी को उत्तर देने लगे। और वसुदेव जी को उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि ये जिस जो प्रश्न आपने किया है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे कर्म फलों का नाश होता है, तो वो है ऐसे सारे कर्म जो श्री कृष्ण के लिए यज्ञ के रूप में किए जाए, या वो यज्ञ जो भगवान श्री विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है, उस कर्म के द्वारा, उस यज्ञ के द्वारा सारे कर्म फलों को नाश कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि विद्वानों ने कहा है कि ये सबसे सरल मार्ग है मन को वश में करने का, मुक्ति का और अपने कर्तव्य पालन का। यज्ञ करना चाहिए, उन्होंने यज्ञ करने की संस्तुति की। उन्होंने कहा कि सबसे शुभ होता है व्यक्ति के लिए यज्ञ करना। और वो आगे कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को धन की इच्छा को त्यागना है, धन के प्रति जो लोभ है उसको त्यागना है, त्यागना ही चाहिए। वो कहते हैं व्यक्ति को अब धन के प्रति जो इच्छा, बहुत ज्यादा धन पाने की जो लालसा है उसको त्यागना चाहिए। कैसे? यज्ञ कर और दान कर। इसीलिए गृहस्थ जीवन में यज्ञ दान करने की संस्तुति की गई है। वैसे तो यज्ञ, दान, तपह, इन तीनों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो यज्ञ करें और दान करें। तो ये वो कहते हैं कि अगर धन, व्यक्ति को धन की इच्छा, धन की लालसा, धन के लोभ को यज्ञ और दान के द्वारा त्यागना चाहिए। व्यक्ति को अगर बड़ी इच्छा है, अपनी पत्नी इत्यादि से बहुत आसक्ति है, वो कैसे त्याग सकते हैं? वो त्याग सकते हैं जो पारिवारिक अनुभव है उनके आधार पर। साधु कहते हैं कि धन की इच्छा त्यागनी है, दान कीजिए, यज्ञ कीजिए। पत्नी, बच्चों से जो आसक्ति है उसको त्यागना है, तो जो अनुभव हुआ है पारिवारिक जीवन में उसके आधार पर त्याग दीजिए। इतने बुरे अनुभव होने के बाद भी लोग पड़े रहते हैं, कोई परिवार छोड़ना नहीं चाहता। ये समय चला गया जब व्यक्ति 50 साल के होने के बाद वन की बात सोचने लगते थे, वन में जाना चाहिए, लेकिन वो सब रह गया। अभी व्यक्ति 70 साल, 80 साल, फिर भी वह परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इतनी आसक्ति, इतने बुरे अनुभव हो जाते हैं परिवार में, फिर भी उसी में बना रहता है। अब वो बुरे अनुभवों से सीखता नहीं है, उसको जीवन का अंग मानता है कि ये तो संघर्ष है। ये संघर्ष नहीं है, ये मूर्खता है कि इतने अनुभव हो गए हैं बुरे, फिर भी व्यक्ति तो इस तरह है कि व्यक्ति जेल में रहे, उसको मारा जाए, उसको पीटा जाए, कष्ट दिया जाए, और उन अनुभवों के बाद भी वो व्यक्ति कहे कि यही जीवन है और जेल में ही बने रहना चाहे। उसका समय भी हो जाए जाने का तो वो प्रार्थना करे। ये पारिवारिक जीवन है कि जब जेल में रहता है बड़ा कष्ट होता है, और जेल से जाने का समय हो गया, जेलर कह रहे हैं ठीक है अभी तुम्हें छोड़ना है, तो वो रोते हुए एक बहुत बड़ी प्रार्थना करता है कि कृपया मुझे यहां से बाहर मत निकालिए, आप मारिए मुझे, बड़ा अच्छा है, आप दंड दीजिए लेकिन बाहर मत निकालिए। तो यही पारिवारिक जीवन है कि व्यक्ति अनुभव करता है कष्टों का। और शास्त्र कहते हैं, साधु कहते हैं कि इसको छोड़ना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, उसी में बना रहता है, प्रार्थना करता है। समय आ गया, 50 साल हो गए हैं, आपने अपना सब कर लिया जो करना था, जेल की जितने दंड भोगना था भोग लिया, अब बाहर निकलो। व्यक्ति कहता नहीं, प्रार्थना करता है कि कृपया मुझे बने रहने दीजिए, मैं रहना चाहता हूं पारिवारिक जीवन में। तो सुनता नहीं है, ये तो इस तरह है कि अगर दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं कि चलो जाना है, तो वो बाहर ही नहीं जाता है जेल के। तो साधु कहते हैं कि इस अनुभव से पत्नी बच्चों के प्रति आसक्ति को त्यागना चाहिए। और अगर किसी की इच्छा ऊंचे
लोकों में जाने की है कि वो ऊंचे लोकों में चला जाए तो उसको कैसे त्यागना चाहिए। ये कहते हैं कि उसको काल के प्रभाव को देखकर त्याग देना चाहिए क्योंकि ऊंचे लोकों में भी काल का प्रभाव है। चीने पुण्य मरते लोकम विशंति, जब काल के प्रभाव से वापस आ जाने वाले हैं तो फिर क्या लाभ है वहां जाने का। तो साधु कहते हैं कि स्वर्ग की इच्छा को त्याग देना चाहिए काल के प्रभाव से, ऐसे स्थान पर जाने का प्रयास करना चाहिए जो काल के परे है। इसका अर्थ ये है। तो इसीलिए व्यक्ति को साधारणतः यही आसक्तियां होती हैं, धन से आसक्ति, परिवार से आसक्ति और फिर ऊंचे भोग से आसक्ति। तो इन तीनों को त्यागना चाहिए यज्ञ के द्वारा, अनुभव के आधार पर और काल के प्रभाव को देखकर। और फिर उन्होंने कहा आगे कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो तीन जो ऋण है उसको तो उसे चुकाना ही होता है, नहीं तो बहुत कष्ट होता है या कहते हैं कि उसे नरक जाना पड़ता है। तो तीन कौन से ऋण हैं? देवताओं का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण और पितरों का ऋण। ये तीन ऋण चुकाने ही होते हैं। तो देवताओं का ऋण चुकाया जाता है यज्ञ करके, साधुओं का ऋण चुकाया जाता है शास्त्र पढ़कर और पितरों का ऋण चुकाया जाता है। साधु कहते हैं कि कैसे जैसे संतान उत्पन्न करें जो आगे चलकर अच्छे यज्ञ इत्यादि कर सके, तर्पण इत्यादि कर सके। तो फिर उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि दो ऋण तो आपने चुका दिए, साधुओं का ऋण चुका दिया है आपने और पितरों का ऋण चुका दिया है, संतानें उत्पन्न की हैं, शास्त्र अध्ययन कर लिया है, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये ऋण चुकाना है। कौन सा? देवताओं का ऋण चुकाना है। तो इसीलिए देवताओं के ऋण को चुकाने के लिए आपको यज्ञ करना चाहिए। तो ऐसे वो कहते हैं देवताओं के ऋण को चुकाने के लिए यज्ञ कीजिए। तो जब वसुदेव जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और फिर वर्णन है कि उन्होंने कैसे बड़ी प्रसन्नता से यज्ञ किया। सारे जितने यदुवंशी थे, ऋषि वहां पर थे, सब लोगों ने मिलकर फिर बहुत यज्ञ किए वहां पर। तो ऐसे सारे यज्ञ प्राय समाप्त हो गए, बहुत से यज्ञ उन्होंने किए। तो अब नंद महाराज जो वहां बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, किस लिए इंतजार कर रहे थे? कि कृष्ण से मिल सकें, अलग से बात कर सकें, लेकिन इतनी भीड़, इतने लोग, इतने सत्य हो नहीं रहा था। तो यज्ञ इत्यादि हुए, फिर यज्ञ के बाद जितने राजा थे, अन्य जो आए थे, धीरे धीरे सब चले गए, बहुत समय बीत गया। और उसके बाद वसुदेव जी नंद महाराज से मिले और उन्होंने नंद महाराज को बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, जब आपने इतनी हमारी सहायता की लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम बंधे हुए थे, कंस का अत्याचार चल रहा था, लेकिन अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो वर्णन है कि नंद महाराज अब जाना चाहते थे लेकिन हर रोज वो सुबह ये सोचते थे, रात को सोचते थे कल चले जाएंगे, हर रोज ये कहते थे कि ठीक है कल हम चले जाएंगे। तो ऋषिवंशी सोच रहे थे कि सभी गए हैं, अब ये लोग भी जाएं, उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे। तो उन्होंने फिर जितने भी बाकी लोग थे जा रहे हैं तो नंद बाबा कहते थे मैं कल चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा। कारण ये था कि नंद महाराज ये सिखलाना चाहते थे या बताना चाहते थे वसुदेव को कि तुम असली पिता नहीं हो कृष्ण के, मैं हूं, इसलिए कृष्ण को हमारे साथ भेजो। तो बस इस बात को कहने के लिए कल 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 करते करते 3 महीने वहीं पर रहे नंद महाराज इत्यादि ब्रजवासी। तो 3 महीने के बाद फिर एक दिन वसुदेव जी, उग्रसेन, कृष्ण, नंद महाराज सब थे। तो उस समय नंद महाराज ने कहा, उन्होंने कहा वसुदेव जी से कि आप कृपया कृष्ण को हमारे साथ भेज दीजिए, हम यहां पर सूर्य ग्रहण के लिए नहीं आए थे, अपने आप को शुद्ध करने नहीं आए थे, हम तो केवल ये सोचकर आए थे सारे ब्रजवासी कि यहां से श्री कृष्ण को ले जाएंगे और अगर नहीं ले जा सके तो अपने प्राण यहां दे देंगे। तो आप कृष्ण को हमारे साथ भेज दीजिए, नहीं तो हम लोग यहीं आपके सामने इस पवित्र स्थान में, इस परशुराम ये जो सरोवर है इसमें हम अपने प्राण दे देंगे, तो आप कृष्ण को भेजिए। तो वसुदेव जी ने सुना तो बड़े गंभीर हो गए, अरे नंद महाराज ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो फिर प्रेम से समझाया, उन्होंने कहा कि देखिए हम जानते हैं कि आप कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, और कृष्ण के बिना आप रह नहीं सकते इसीलिए आप कृष्ण को लेने आए हैं, लेकिन अभी जैसे हम लोग सब यहाँ साथ में आए हैं यदुवंशी इत्यादि, अभी वापस जाना है, कृष्ण की पत्नियां हैं, इतने सारे हैं, उनको कैसे अकेले भेजेंगे, और फिर लोग क्या कहेंगे, अरे आप कृष्ण को लेकर गए थे वापस नहीं आए, और फिर ये वृष्णिवंशी तो सारे प्राण दे देंगे अपने। तो इसीलिए मैं आपको वचन देता हूं कि हम जब द्वारका पहुंच जाएंगे तो अगले दिन ही हम कृष्ण को भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए, अगले दिन कृष्ण को भेज देंगे, लेकिन बस द्वारका पहुंचने दीजिए, इतना आप कृपा कीजिए। तो जब वसुदेव ने ये कहा तो उग्रसेन भी वहां पर थे, तो उग्रसेन ने भी कहा कि हाँ हाँ ये जो कह रहे हैं मैं भी वचन देता हूं, कृष्ण को अगले दिन भेज देंगे हम, आप अभी जाने दीजिए, अभी मत लेकर जाइए कृष्ण को, अभी तो हम लोग साथ में आए हैं, साथ में वापस जाना होगा। तो फिर जब कृष्ण ने देखा कि नंद महाराज किसी तरह से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो नंद महाराज से अकेले में मिले, और श्री कृष्ण ने नंद महाराज से कहा कि देखिए मैं जानता हूं कि आपका मेरे प्रति बहुत प्रेम है और आप मुझे ले जाने आए हैं, और मैं भविष्य भी जानता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब मैं यहां से वापस जाऊंगा द्वारका, तो थोड़े समय बाद ही युधिष्ठिर महाराज मुझे राजसूय यज्ञ के लिए बुलाएंगे, मैं वहां जाकर शिशुपाल का वध करूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा, मैं दंतवक्र को मारूंगा और फिर शाल दंतवक्र इत्यादि को मारूंगा, विदुरथ को मारूंगा, और उसको मारने के लिए मुझे मथुरा आना होगा, और फिर वहां से मैं ब्रज में आऊंगा और बहुत समय आपके साथ बिताऊंगा, या उसके बाद आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। तो ऐसे जब आश्वासन दिया श्री कृष्ण ने कि उन्होंने कहा अभी जाना जरूरी है, क्योंकि अभी तो नहीं जाऊंगा तो वृष्णिवंशी सारे प्राण दे देंगे, और अगर नहीं भी दिया ये पहुंचेंगे तो उनको बहुत सारे असुर आक्रमण कर देंगे उनके ऊपर, तो मेरा कर्तव्य है अभी इनकी भी रक्षा करना, तो आप अभी जाइए, मैं वचन देता हूं कि बस ये सब कार्य कर मैं आऊंगा और फिर वहां पर आपके साथ ही हमेशा रहूंगा। तो खैर नंद महाराज ने इस बात को स्वीकार किया, फिर नंद महाराज को बहुत से उपहार दिए वसुदेव ने, और फिर नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल वो भी चले गए, और इसी तरह फिर उसके बाद सारे वृष्णिवंशी वो भी वापस आए द्वारका में, और द्वारका में आकर फिर उन्होंने बताया कैसे वहां पर उत्सव हुआ, क्योंकि कई महीने बाहर थे, तो आकर सब उत्सव का वर्णन उन्होंने किया। तो ऐसा इस अध्याय में वर्णन है, अब अगले अध्याय में आगे वर्णन होगा और बहुत सी लीलाओं का, अब भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन होगा, तो इन आगे सुभद्रा का हरण भी आने वाला है, बहुत सारा अभी लीलाएं हैं, तो आगे इसको फिर कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, सो प्रश्न ये है कि जो भगवान जो ऋण की बात की गई कि ऋण चुकाने होते हैं, तो जो लोग भक्ति में हैं उनका कैसे ऋण चुकता है, और जो भक्ति में नहीं है और उनकी संतान नहीं है तो पितरों का ऋण कैसे चुकता है, राइट। सो जो लोग भक्ति में हैं उनका तो हम सब जानते हैं, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, उनका ऋण वैसे ही चुक जाता है। जैसे कहा गया है, देव ऋषि भूतात निराम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी चराचन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। कि जितने भी ऋण है देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, अन्य जीवों का, देव ऋषि भूतात निराम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी चराचन, तो वो व्यक्ति ऋणी नहीं रह जाता। कौन? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण चला जाता है। सर्वात्मना, जो सबकी आत्मा है उनके शरण चला जाता है। गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, तो भगवान कृष्ण के लिए अपने बाकी सारे कर्तव्यों को त्यागता है तो उसके लिए कोई ऋण नहीं रह जाता, उसका ऋण वैसे ही चुक जाता है, ये शास्त्र कहता है। तो अगर कोई भक्त है और वो भक्त जिसने भगवान को पूर्ण समर्पण कर दिया है उसके लिए कोई ऋण नहीं, और जो ऐसे भक्त हैं उन्होंने समर्पण नहीं किया है लेकिन भक्ति मार्ग का पालन कर रहे हैं तो उनके लिए भक्ति को गंभीरता से करना और उनके ऋणों को चुकाना है। कितनी गंभीरता से वो भक्ति को करें उनके लिए अलग से आवश्यक नहीं है, अगर वो भक्ति गंभीरता से कर रहे हैं। लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए सारे कार्य करना जरूरी है उनको, फिर क्योंकि अगर भक्ति कर रहे हैं तो अध्ययन अपने आप हो जाता है जिससे साधुओं का ऋण चुक जाता है, यज्ञ अपने आप हो जाता है, महामंत्र का जप करते हैं तो यज्ञ हो जाता है, और तर्पण, नरसिंह देव भगवान बताते हैं प्रहलाद महाराज को जो भक्ति करता है उसकी तो वैसे ही 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो जो श्राद्ध इत्यादि वो इसलिए कि उनका उद्धार हो, तो वो तो भक्ति से वैसे ही हो रहा है। तो इसलिए जो भक्ति कर रहा है उसको कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन गंभीरता से भक्ति करे, ये भी नहीं कि भक्ति भी गंभीरता से नहीं कर रहे और अपने कर्तव्यों को नहीं, तब फिर पाप लगेगा। दूसरा ऐसे कि जो भक्त नहीं है उनके कैसे ऋण चुकेंगे, और उनके अगर संतानें नहीं है, पुत्र नहीं है तो कैसे होगा। तो जो भक्त नहीं है उनको बड़ी गंभीरता से सारी चीजें करनी चाहिए, भगवान के लिए, देवताओं के लिए यज्ञ करना, अध्ययन करना शास्त्रों का, ये आवश्यक है। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो सारे ऋण नहीं चुक रहे हैं, और इसी तरह पितृ का भी ऋण नहीं चुक रहा है क्योंकि वो बाकी ऋण भी कहाँ चुका रहे हैं, देवताओं का ऋण नहीं चुका रहे हैं, साधुओं का नहीं चुका रहे हैं, अन्य जीवों का नहीं चुका रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो फिर उनके कर्मों के अनुसार वो फिर कर्म बंधन में है। तो भक्त है वो कर्म बंधन में नहीं है इसीलिए ऋण नहीं है, बाकी लोग पूर्ण रूप से कर्म बंधन में है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे कर्म बंधन कट सके, तो फिर कर्म के अनुसार जो जो उनकी गति है वो उनको मिलेगी। तो कर्म के अनुसार उन्हें नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, वो उनकी गति होगी, ठीक है। भक्त भी जो होते हैं वो श्राद्ध कराते हैं तो वो श्राद्ध कंपलसरी है या नहीं, ये प्रश्न है। श्राद्ध में कई प्रकार के श्राद्ध होते हैं और उनमें एक श्राद्ध होता है वैष्णव श्राद्ध। तो वैष्णवों में भी श्राद्ध की पद्धति ऐसा नहीं है कि वैष्णवों में श्राद्ध नहीं होता है, श्राद्ध तो किया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्राद्ध किया युद्ध के बाद, युधिष्ठिर महाराज के साथ सभी संबंधी थे उनके, उन्होंने किया। तो श्राद्ध करना चाहिए लेकिन वैष्णव पद्धति से। तो क्या होता है वैष्णव पद्धति में श्राद्ध, साधारण श्राद्ध क्या होता है? साधारण श्राद्ध में दो प्रकार के श्राद्ध होते हैं उसमें। तो एक में केवल कुछ बनाकर और अर्पण किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आटे के गोले बनाकर किसी किसी के देवता इत्यादि करके फिर उनको तर्पण करते हैं। तो एक श्राद्ध होता है जिसमें देवताओं को किया जाता है या पितरों को, कभी कभी तो लोग सीधे पितरों को भोग अर्पण कर देते हैं और उसके बाद फिर वितरित करते हैं, तो ये सब ठीक नहीं। वैष्णव श्राद्ध की पद्धति इतनी ही है कि अगर वैष्णव श्राद्ध करना है तो श्राद्ध के दिवस पर वैष्णवों को घर पर बुलाना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, अनिवार्य है, कीर्तन होना चाहिए, भगवान के नाम का कथा हो और भगवान को अर्पण किया गया प्रसाद फिर वैष्णवों को खिलाना चाहिए। क्योंकि जो ब्राह्मण भोज इत्यादि करते हैं, सीधे बनाते हैं, वो दे देते हैं, कोई भोग नहीं लगाते हैं, और वो ब्राह्मण भी केवल वो थोड़ा बहुत कुछ गाय के लिए कौवे के लिए निकाल देते हैं इत्यादि, लेकिन भगवान को अगर भोग लगा नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। फिर आपने कितना ही ब्राह्मण को खिला लिया, उसको छतरी दे दी, उसको चप्पल दे दी, उसको कपड़े दे दिए, कोई लाभ नहीं। तो एक मान्यता है और एक ये प्रथा भी है शास्त्र के अनुसार कि श्राद्ध में, कर्म कांडी श्राद्ध में ये सब किया जाता है। ब्राह्मण को देने से उनको लगता है कि चलो जो हमारे पितर हैं उनको प्राप्त होगा, तो ये कर्मकांड की दृष्टि से ठीक है। भक्ति की दृष्टि से हमें भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण, वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों को प्रसाद खिलाना, ये बहुत, इससे ज्यादा कोई लाभ नहीं देता है, इससे अधिक लाभ पितरों को हो नहीं सकता। और इसका प्रमाण नरसिंह देव ने दिया कि जो भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ियां भगवान तर देते हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा कि कर्मकांड में श्राद्ध करने से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो इसीलिए सही दृष्टि, सही मार्ग श्राद्ध का है कि किस तरह से वैष्णवों के उपस्थिति में भगवान का नाम, भगवान की कथा और भगवान का प्रसाद। ठीक है, ओके ओके। यहाँ कोई प्रश्न है? जय श्री श्री गो नटराज दयाल नेताय की जय। यहाँ एक प्रश्न है, सूर्य देव को सूर्य नारायण कहना उचित है क्या? हाँ, सूर्य देव को सूर्य नारायण कहा जाता है और इसका कारण कई है। एक कारण है कि जो भी प्रमुख होते हैं, राजा होते हैं या प्रमुख देवता होते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे नरदेव राजा को कहा जाता है, तो राजा के प्रतिनिधि के रूप में उनको सूर्य नारायण कहा जा सकता है, या कृष्ण के, नारायण के प्रतिनिधि के रूप में, क्षमा कीजिए। दूसरा, कभी कभी जब ऐसे पदवियों पर, प्रमुख पदवी पर कोई नहीं मिलता तो भगवान स्वयं उसको ले लेते हैं, तो इसीलिए भी उनको सूर्य नारायण कहा जाता है कि वो पदवी उनकी हो सकती है। तो इसीलिए इस दृष्टि से सूर्य को कहना उचित है, लेकिन सूर्य को भगवान मानना और भगवान की पूजा छोड़कर सूर्य की करना, वो सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगर कोई पारिवारिक सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं उसको कुछ अच्छा करने के लिए, तो क्या ये स्वार्थ है या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अगर हम किसी पारिवारिक सदस्य के लिए बिना आसक्ति के, इस बात को समझते हुए कि अगर ये पारिवारिक सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहेंगे तो हो सकता है हमारी भक्ति में बाधा आए, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो पारिवारिक सदस्य हमारी भक्ति में बाधा नहीं भी बनते हैं उनकी बीमारी के कारण, तो भी कहीं ना कहीं उनका हमारे से संबंध है और हमें उन्होंने कहीं ना कहीं किसी रूप में सहायता की है कृष्ण भक्ति के लिए, चाहे विरोध करके या सहयोग करके, तो भी हम कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के लिए किया। और तीसरा, कि अगर हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है तो किस भाव में कर सकते हैं? एक भक्त का भाव होता है वो हर जीव के लिए प्रार्थना करता है, वो किसी को कष्ट में देख नहीं सकता, पर दुख दुखी, तो भले हम उनको अपना संबंधी ना मानते हुए, लेकिन एक जीव है जो कष्ट सह रहा है, तो क्या भक्त उसके कष्ट को देखते हुए प्रार्थना भी नहीं करेगा? भक्त को निश्चित प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में आसक्ति ना हो, मेरे संबंधी हैं इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं, इन्होंने कुछ मुझे भक्ति में मदद की है, कुछ भी हो, अंततः भगवान के अंश हैं, जीव हैं, कष्ट भोग रहे हैं, क्यों नहीं। और अपने संबंधी छोड़िए, आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको सड़क पर कष्ट में दिखता है, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और कोई मनुष्य ही क्यों, कोई प्राणी हो, कोई पशु सड़क पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी जीव है। ये भक्त का एक लक्षण है कि वो सभी का हित चाहता है, सभी का शुभ चिंतक होता है, ये भक्त का एक लक्षण है सभी जीवों का, इसलिए कोई गलती नहीं है। अगला प्रश्न है, एकादशी श्राद्ध कब करना चाहिए? अच्छा, आपका एक प्रश्न ये है कि अगर श्राद्ध एकादशी के दिन आ जाए तब क्या करना चाहिए, अगर या एकादशी श्राद्ध हमें नहीं समझ में आया, शायद प्रश्न ये होगा कि अगर एकादशी के दिन आ जाए तो क्या करना चाहिए। साधारणतः उसको एकादशी का जो तिथि का समय होता है उसको छोड़कर किया जाता है, जब एकादशी समाप्त हो रही है तो उस तिथि का समय देख सकते हैं और उसके बाद किया जाता है। अगर आपका प्रश्न यही है, कोई और प्रश्न है तो अच्छा, तो प्रश्न यही है तो हाँ, एकादशी के तिथि के समय, हर तिथि का समय होता है तो उस समय के बाद जब वो तिथि समाप्त हो रही है उसके बाद श्राद्ध को करना चाहिए। ज्यादातर अगर जैसे हम लोग तीसरे दिन श्राद्ध होता है, चौथे दिन होता है, तो उस दिन एकादशी आ जाए फिर एकादशी की तिथि को बदल, हमें एकादशी तिथि के समय के बाद उसको करना चाहिए। प्रश्न है कि किस तरह हमारी भक्ति के कार्य को सही और सही समय पर और सही तरीके से करना चाहिए। भक्ति के कार्य को सही तरीके से और सही समय पर करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए आचार्यों की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, जो हमें आचार्यों ने बताया कैसे करना है, क्योंकि हम अपने मन से तरीके नहीं निकाल सकते। जैसे कहा गया है, जैसे हमें जप करना है, कैसे जप करना है आचार्यों ने बताया हुआ है, ध्यान पूर्वक जप करना है, एक भिक्षुक के भाव में जप करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करना है, तो ये सब जो बताया गया है उसके आधार पर, तो वो सही दृष्टि है। और समय पर करना ये हमारे लिए है, आचार्यों ने बता दिया कि सही क्या है और समय पर करना ये हमारे लिए। जिस प्रकार हम सभी चीजें समय पर करते हैं, हमने देखा है कि कुछ लोग जॉब पर जाते हैं तो बहुत समय पर जाते हैं लेकिन जब समय पर नहीं करते हैं, तो उनके लिए उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस चीज को हम महत्व देते हैं उसको समय पर करते हैं। आपको पता है कि अगर आप समय पर नहीं जाओगे अपनी जॉब पर तो आपका पैसा कट जाएगा, तो आप इसीलिए बहुत समय पर जाते हो, भाग कर जाते हो, सब कुछ छोड़कर जाते हो, बच्चा बीमार हो रहा है तो भी छोड़कर जाते हो जॉब पे जाना है। तो इसी तरह हमें पहले महत्व पता होना चाहिए भक्ति का, कि अगर हम सही समय पर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है। हमें लगता है ठीक है जब आज की या कल कर लेंगे क्या फर्क पड़ता है, भगवान की पूजा कभी भी हो सकती है, तो समय का पाबंद होने के लिए हमें इसको देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारे घर का जो मंदिर है वो नीचे स्तर पर है किसी कारण से, माय हाउस टेंपल इज डाउन लेवल एंड ड्यू टू सम फिजिकल प्रॉब्लम्स डॉक्टर रिफ्यूज टू सिट ऑन द फ्लोर, सो नाउ आई एम सिटिंग ऑन द हायर लेवल ऑफ टेंपल, पर एक अपराध बहुत बोध लगता है तो क्या करना चाहिए। अगर स्थिति ऐसी है जहां पर आप उसको ठीक नहीं कर सकते, बहुत अच्छा होगा अगर वो स्थिति ठीक की जा सके, भगवान का स्तर थोड़ा ऊंचा किया जा सके तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा मांग कर, ये कोई इमरजेंसी स्थिति है, बीमार हैं और हमें ऐसा करना पड़ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्षमा मांग कर भगवान से कर लीजिए, बस ये देखिए कि पांव आपके उस तरफ ना हो, ऐसे दिशा में आप बैठ सकते हैं। एकादशी तिथि के बाद का मतलब समझाइए, मतलब एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद, एकादशी का समय होता है, कभी कभी एकादशी तिथि उसी दिन एकादशी के दिन शाम तक संध्या तक समाप्त हो जाती है, अगले दिन समाप्त हो रही है, तो जब भी हो तो प्रायः अगले दिन करना चाहिए, एकादशी के दिन नहीं, ठीक है। क्या भगवान से भौतिक तकलीफ को दूर करने की प्रार्थना करना चाहिए या नहीं? निश्चित करना चाहिए। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषः परम, जब तक हमारा स्तर भक्ति का बहुत ऊंचा नहीं है, कोई गलती नहीं है अगर भगवान से हम इसलिए मांगे कि हमारी भक्ति अच्छी चलती रहे। अगर हम इस दृष्टि से भगवान से कुछ मांग रहे हैं कि मैं बीमार हूं और मुझसे जप नहीं हो रहा ठीक से, आप बीमारी दूर करिए ताकि मैं जप कर सकूं, तो कोई चिंता नहीं। लेकिन हम लोग केवल इसलिए मांगे भगवान से कि भगवान तकलीफ दूर कर दीजिए, मैं भोग नहीं कर पा रहा हूं, आनंद नहीं ले पा रहा हूं, तो वो ठीक नहीं। तो भक्ति के लिए तो हमें मांग लेना चाहिए, ठीक है। How do we realize that our bhakti is progressing, but we don't have shelter of guru yet, but praying to Lord Krishna ki guru ki shelter mil jaye. So bhakti mein pragati hai ki nahi, iska pehla lakshan hai, hum kitne aatur hain Krishna ko prapt karne ke liye. Dusra lakshan hai, jab mein hamari kitni ruchi badhi, kya jab ko hum प्रेम से करते हैं, आनंद से करते हैं, या बस एक कर्तव्य मानकर करते हैं कि हमने बोल दिया है करना है तो कर रहे हैं। जैसे ऐसे लोग कई चीजें करते हैं, भक्ति नहीं है। किसी ने समझी बोल दिया मैं इस व्यक्ति का ध्यान रखूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, तो कष्ट होता है तो भी ध्यान रखते हैं, क्यों, मैंने बोला हुआ। इस भावना से तो भक्ति जप नहीं कर रहे हैं, जप में आनंद आना चाहिए। तो पहला लक्षण है कि हमें जप में आनंद आ रहा है या नहीं, कृष्ण का स्मरण तीव्र हो रहा है या नहीं, आचार्यों के प्रति श्रील प्रभुपाद और अन्य आचार्यों के प्रति समर्पण बढ़ रहा है कि नहीं, ये हमारे लक्षण हैं। और जब ये होगा, गुरु भी मिलेंगे, तो आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से। जब हमारी प्रार्थना तीव्र होती है, भगवान हृदय में ही है चेत गुरु के रूप में, और वही चेत गुरु दीक्षा गुरु के रूप में सामने प्रकट होते हैं, तो भगवान उनको भी प्रकट करेंगे। बस आप प्रार्थना तीव्रता से करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।